कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
उपशांति हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगी भ्राता सूरज जी, जिनके उपस्थित होते ही हर ब्राह्मण का अंधेरा दूर दूर तक चला जाता है। सबके चेहरे खिल गए हैं भ्राता जी को देखकर। आदरणीय भ्राता जी 1969 में प्यारे बाबा के अनमोल रत्न बने। आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की, गोल्ड मेडलिस्ट आप थे, और आपने ऐसी सुंदर सेवा को चुना। प्यारे बाबा ने, आदरणीय दादियों ने आपको भोलेनाथ का भंडारा संभालने की ड्यूटी दी, और उस समय इतने साधन नहीं थे, कोयला भट्टी लकड़ी इत्यादि से ही भोजन बनता था। लेकिन आपके योग के प्रयोग 60 मिनट से के अंदर आप 58 मिनट कर्मयोगी राजयोगी बनकर उस भोजन का निर्माण करते थे। ऐसे सफल राजयोगी जो आज पूरे विश्व में ज्ञान सूर्य शिव बाबा का पैगाम देकर और इस भौतिकता के अंधेरे को दूर करके आध्यात्मिकता का सूर्य हरेक के मन में जागृत कर रहे हैं, हमारे पीएम टीवी चैनल के ऊपर समाधान के रूप में आपको हम हीरो एक्टर के रूप में सुनते देखते और अपनी अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्तिगत विंग से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन कोई विंग अछूती नहीं है, चाहे वो स्पार्क विंग हो, चाहे वो जूरिस्ट विंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर विंग हो, आप सभी विंग्स के अंतर्गत अपना कुशल वक्तव्य सारगर्भित अनुभव युक्त राजयोग के प्रयोग विषय की गहराई हर एक इंटेलेक्चुअल को और हर एक ब्रह्मावत्स को प्रदान करते हैं। पूरे भारत के अंतर्गत आप योग भट्टियां कराने सेवा केंद्रों पर जाते हैं। भारत के अलावा हर वर्ष आपको विश्व विदेशों में जाने का भी अवसर मिलता है, और सबके मन को खुशहाल सशक्त बनाकर आप अपनी खुशी में कई गुना चांद लगा लेते हैं। ऐसे आदरणीय भ्राता जी को अपने बीच में पाकर हम सब हर्षित हो रहे हैं और एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि हम निरंतर योगी बने रहे, इस पर आपका मार्गदर्शन हम सबको चाहिए। आदरणीय भ्राता जी
ओम शांति। चाहते हैं आप निरंतर योगी बनना? बहन जी ने तो कह दिया, चाहते हैं? सोच के बताओ, क्योंकि पहली चीज होती है किसी भी कार्य में दृढ़ इच्छा। ऐसे ही कह देना अलग चीज है। सब कह रहे हैं, हम भी कह दें हमें निरंतर बाबा को याद करना है, पर क्या हमारे अंदर उसकी अभिलाषा है? नहीं है। ठीक कहा मैंने? उत्तर दो, है या नहीं है? मुझे तो लगता है नहीं है। है तो उसकी प्लानिंग क्या है? आपको भट्टी के बाद अपने घर जाना होगा, कुछ प्लानिंग की या उड़ के चले जाएंगे? अगर कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग तो होती ही है, इसलिए मैंने कहा निरंतर योग की इच्छा, उसकी अभिलाषा बहुत बड़ी चीज है। मैं निरंतर न कह के दूसरा शब्द यूज करूंगा, हम योग में पूरी तरह सफल हों, हमारा योग संतोषजनक हो, मन की भटकने समाप्त हो जाएं, ये बहुत अच्छी चीज है ना। बाबा बहुत सुंदर सुंदर रहस्य हम सबको मूल्यों में बताते रहते हैं। योग सबसे सरल सब्जेक्ट और सबसे बोलो, मैं कठिन नहीं कह रहा हूं, सबसे गुह्य विद्या। संसार की यदि कोई गुह्यतम विद्या है तो वो राजयोग ही है। लोगों ने तो आसन प्राणायाम को योग मान लिया, चलो वो भी एक ठीक है, योग का नाम तो चालू हुआ और उस बहाने हम लोगों को प्रोग्राम करने को मिलते हैं, सेवा हो जाती है। हम सभी को कुछ लक्ष्य बनाने हैं। पहला लक्ष्य अशरीरी होने का, स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करने का। कवि बाबा ने कहा था, मस्तक में आत्म ज्योति जलती हुई स्पष्ट दिखने लगे, ये होगी तुम्हारी संपूर्ण सोल कॉन्शियस स्थिति। किससे देखते हैं हम आत्मा को? इन आंखों से तो नहीं, बुद्धि की आंख से। मन संकल्प चलाते, मन को भी चक्षु कहते हैं, परंतु बुद्धि चक्षु है। बुद्धि को स्वच्छ करना इसके लिए आवश्यक है। जब बुद्धि पूरी तरह स्वच्छ होगी तो आत्मा और बाबा स्पष्ट दिखाई देंगे। हमारे 84 जन्म ही हमें स्पष्ट दिखने लगेंगे। तो पहला लक्ष्य होना चाहिए, मुझे ये अनुभव करना है, ये देह अलग, मैं इससे अलग। ज्यादा खींचातान की जरूरत ही नहीं, मैं आत्मा, ये मेरा देह, इतना ही संकल्प, मैं और देह अलग। दूसरा, योग के संबंध में ये बातें आप ख्याल रखेंगे तो योग की खींचातान खत्म हो जाएगी। बैठ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा लक्ष्य रखना चाहिए स्मृति स्वरूप होना। ये सब योग के हिस्से हैं। जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई है वो स्मृति हमें आ गई। स्मृति माना सीधी भाषा, स्मृति माना बोलो सीधी रोज की भाषा, नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं, जो कुछ बाबा ने हमें याद दिलाया है उसे स्मृति कहते हैं। उसने याद दिलाया, 5000 साल का खेल पूरा हुआ, मैं आया हूं सबको ले जाने, इसलिए मुझे क्या कहते हैं अजगी मुरली से, महाकाल। तो हमें याद आया कि खेल पूरा हुआ, चलना है। सोचो, अपने से पूछ के देखना, याद आया या केवल ज्ञान है? तुम परम धाम के वासी हो, तुम सतयुग में देवता थे, याद आया? पूछो अपने से, दोनों में अंतर कर लें। ज्ञान होना अलग बात, वो सबको है, याद आया, बाबा ने याद दिलाया तुम महान आत्मा हो, याद आया या नहीं? यह है स्मृति स्वरूप। अगर हम स्मृति स्वरूप हैं तो ये योग हो गया। तो सारा दिन इन दो चीजों का अभ्यास करना चाहिए, आत्मा और स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप को बाबा सरल शब्द देते हैं, आपको कुछ भी ज्यादा सोचना न पड़े, पांच स्वरूपों का अभ्यास जिसको योगी बनना है वो पांच स्वरूपों का अभ्यास करे। पता है कौन से पांच स्वरूप? तुम्हें पता है? तुम्हें तो नहीं पता, बहुत ध्यान से सुन रही है ये भी। पहला अनादि, दूसरा आदि, तीसरा पूज्य, माताओं को नहीं पता, पूज्य का पता है, चौथा, पांचवा, ये याद करें, इनका चिंतन करें। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं अपने घर में, बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया है। बहुत बातें याद दिलाई उसे, तो इतना याद है, कहते हैं कल सतयुग था, आज कलयुग है, कल फिर सतयुग होगा, इतना याद है उसके लिए, आज और कल है केवल। ड्रामा की बहुत गुह्यताएं जो बाबा ने याद दिलाई वो याद आ गई, बहुत सूक्ष्म है, तो साक्षी भाव आ जाएगा। तो ये साक्षी भाव भी धारण करना है और ड्रामा की कई बातों को याद करके अपने चित्त को शांत करना है। योगी बनना है तो चित्त को शांत करना है। सबसे बड़े ज्ञानी वे जो अपने चित्त को शांत रखें। सोच लें सभी, सबसे बुद्धिमान भी वे जो चित्त को शांत कर सकें। उदाहरणाएं हैं योग के लिए, एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस आप सबको करनी है और बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक दिन में, एक साल में, दस साल में भी पूरी नहीं होती, लंबा काल करनी पड़ती है, और वो है आत्मिक दृष्टि। क्योंकि दिखता देह ही है लेकिन हमें वो देखना है जो नहीं दिखती। इसकी प्रैक्टिस से अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे। करके देखेंगे सभी, ऐसा नियम बना दें आप, छोटा सा नियम जिसको मैंने प्लानिंग कहा। ट्रैफिक कंट्रोल कौन कौन करते हैं आप में से? अच्छा, बहुत करते हैं। तुम भी करते हैं? वाह, योगी आत्मा है ये, इसके चेहरे से लग रहा है। जो नहीं करते वो उस टाइम कर लें थोड़ा सा, गीत बजा, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योग करने के साथ संकल्प कर लें कि संसार में सभी शरीरों में चमकती हुई आत्माएं विराजमान हैं। जैसे ये संसार आत्माओं की दुनिया है, थोड़ी देर के लिए इतना अभ्यास, बस आधा मिनट का, हमें बहुत अच्छा अनुभव देगा। योग भी तुरंत लग जाएगा, 3 मिनट भी हमारे सफल हो जाएंगे ट्रैफिक कंट्रोल के। बहुतों ने अपने फोन में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत भरे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान रहता है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे याद आ गई एक बात, अरे ये समा जी हमारे यहाँ आया करते थे, सबसे पहले आए थे लाला जगत नारायण, पंजाब केसरी के संपादक, उनके पिता लाला लाजपत राय, सुना होगा इतिहास में नाम, स्वतंत्रता सेनानी, वो उनके लड़के थे, आए, बहुत अच्छा लगता था, कई लेख लिखे। उनको आतंकवादियों ने मार दिया था, पंजाब में भी आतंकवाद चला था। उनका लड़का रमेश, वो कई बार आए यहाँ, जब वो पहली बार आए उन्होंने 7 लेख लगातार लिखे, बड़े बड़े, जो आर्य समाजियों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ये सब आर्य समाजी थे। तो उसने एक बात लिखी कि ब्रह्मा कुमारीज में और आर्य समाज में एक बहुत बड़ा अंतर है। आर्य समाजी लोग, मैं प्रधान बनूं हेड, उस चक्कर में बहुत पड़ गए हैं, और ब्रह्मा कुमारियां बहुत ज्यादा योग अभ्यास कराती हैं, क्योंकि वो देखते थे 10:30 का गीत बज गया, अब लोग घूम रहे हैं, कॉन्फ्रेंस थी तो काफी लोग होते थे, लोग घूम रहे हैं जहां तक, सब खड़े हो गए। अब ये सेम ही उनके लिए चमत्कारिक था अपने में। जब उन्होंने पूछा कितनी बार होता है, 7 बार होता है भाई, अपील की उन्हीं बात बहुत ज्यादा कि ये सफलता का राज है, बहुत अभ्यास करना। जिसको योगी बनना है वो बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की प्लानिंग करें। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की प्लानिंग है ना छोटी सी, पर उससे भी अच्छा होता है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे हमारे पास ये प्लानिंग हो कि हम क्या अभ्यास करेंगे। केवल योग करेंगे ये नहीं, खड़े हो गए इतना नहीं, बाबा को याद करने लगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। 3 मिनट का गीत बजता है, 3 मिनट बहुत हैं, 1 मिनट का बजता है। संकल्प कर लो जब भी 1 मिनट का गीत बजेगा हम संसार को शांति के वाइब्रेशंस देंगे। सफल होगा एक एक मिनट, और वो 1 मिनट हमें एकाग्र करेगा। 1 मिनट की एकाग्रता हर घंटे छोटी चीज नहीं है, बहुत बल मिलेगा इससे। बाबा कभी कहा करते थे हर घंटे में 1 मिनट योग लगाओ, पहले 3 मिनट कहा फिर 1 मिनट भी कहा। तो हमारी चर्चाओं में यह बात हुई ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजे, कईयों ने विरोध किया, इनका योग नहीं लगता, उन्होंने विरोध किया है काम करते हुए, कहां से योग लगाएंगे। मुझे कहते थे तुम्हें सब्जी नहीं जल जाएगी योग लगाते रहोगे तो, उन्हें पता ही नहीं कि योग में सब्जी और अच्छी बनती है, जल भी रही होगी वो भी रुक जाएगी। योग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये नियम बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये याद रखना है सबको, बहुत प्रैक्टिस। कुछ धारणाओं पे ध्यान देंगे, फिर मैं आपको योग की छोटी छोटी अलग अलग तरीके बता दूंगा, थोड़े में मैंने बताए हैं बहुत सारे, आप में से बहुतों ने सुने होंगे। पहली धारणा सरलता, मैं इनका विस्तार ज्यादा नहीं करूंगा, सहज भाव से जीना, कुछ चीजों को स्वीकार करके जीना, अपनी कामनाओं को कम करते हुए जीना, ये सरलता है। दूसरी संतुष्टता, हमारे दिल से ये आवाज हो बाबा को पाने के बाद, मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो पसंद है ये बात, फिर कहता हूं सोच के उत्तर देना। बाजार में कोई अच्छी ज्वेलरी देखती है, माताओं की क्या इच्छा होती है आजकल, होती है या छूट गई ये इच्छा, ये जेवर बहुत अच्छा है, ये नेकलेस बहुत अच्छी बनी है, ले लें, नवी पहनी चोरों के डर से तो लेके तो रख लें, देख देख तो खुश होंगे ना। क्या इच्छाएं होती हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा इच्छाएं उसका योग उतना ही कम। इच्छाएं मन को एकाग्र नहीं होने देंगी। इस सूक्ष्म बात को सभी ध्यान दें, इच्छाएं बहुत हैं, भले ही संकल्प न चलता हो, आपके पास पैसा बहुत है, आपको इच्छा हुई ये लें, आपने ले ली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपने बहुत सारी चीजें ले ली, इन चीजों के इफेक्ट से एकाग्रता कम होती जाएगी। ऑटोमेटिक सिद्धांत है, क्योंकि जो चीज हमारे पास होंगी उनमें हमारी आसक्ति होगी ही, उससे अलग हटना ये पुरुषार्थ होगा। तो संतुष्ट आत्मा बनकर रहना, आपको कमाना भी है, आपको बहुत सारी चीजें अपने परिवारों में भी रखनी है, ये तो नहीं ना कुछ नहीं रखना, छोड़ छाड़ दें सब, लेकिन इसके बाद भी आत्मा तृप्त, जो पाने की इच्छा थी वो पा लिया, बाबा की साकार में एक मुरली थी और उस मुरली में ब्रह्मा बाबा का अंतिम नशा झलकता था। मुरली भी 68 की थी, गीत बज गया था, आखिर वो दिन आया आज। और इस पे तो जैसे बाबा डांस करने लगे थे मुरली में, सुनने वाले तो आप ही करने लगे थे। तो दिल से आवाज हो जाए, अपने को ट्रेंड करें सभी। अब भगवान को पाने के बाद इच्छाओं की गुलामी नहीं, गुलामी है ये, इच्छाएं कम करते चले। तीसरी धारणा, आप बोलेंगे कुछ क्या चाहिए वो धारणा? भाई लोग बोले बहुत सूक्ष्म रूप से चेक करेंगे, संसार की सभी आत्माओं के लिए प्रेम और सुभावना, एक के लिए भी नफरत है, योग टूटेगा। देख लें सभी, एक के लिए, संसार में तो और वो लोग हैं ना, एक के लिए भी नफरत है, योग टूटेगा। इसलिए सभी के लिए आत्मिक प्रेम और सद्भावनाएं, बहुत सूक्ष्म विषय है, प्रेम नफरत में बदल चुका है संसार में, स्वार्थ ने इस प्रेम की निर्मलता को नष्ट कर दिया है। अगली धारणा बोलो। हाँ, राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष से मुक्त, मैंने उसको प्रेम और सद्भावनाओं में ही जोड़ दिया, बहुत अच्छी प्योरिटी। और ये सभी बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, बिना 4 घंटे योग के रोज, प्योरिटी माया जीत कोई बन नहीं सकेंगे। 4 घंटे योग अवश्य चाहिए। आजकल तो बहुत सुनने में आता है, फलाना भाई इतने साल से चलता था छोड़ दिया, बहाना कुछ भी बनाया, पर असली बीज है इंप्योरिटी। तो 4 घंटे योग से अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें, सभी बहुत ध्यान देंगे इस पे। नहीं तो क्या होगा, अगर प्योरिटी पे ध्यान नहीं होगा, केवल वासनाओं को दबाया होगा। ध्यान से सुन ले सभी भाई बहने, दोनों के लिए है, तो आने वाले समय में इम्प्योरिटी पावरफुल रूप से बाहर आ जाएगी, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। और ये संगम युग के लिए अभिश्राप होगा, इसलिए अभी से योग की शक्ति को बढ़ाकर अपने संस्कारों को पावन कर देना है, आंतरिक वासनाओं को नष्ट करना है। इसलिए सुंदर प्लानिंग अवश्य करेंगे, हर एक अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करें, ऐसे जीवन न बीत रहा हो। मुरली भी रोज सुननी है, बहुत लोग तो रोज मुरली भी नहीं सुन पाते, घर पढ़ लेंगे, टीवी पे देख लेंगे। मुरली के लिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, बाबा ने पहले तो एक सुंदर बात कही है, बाबा से प्यार माना उसकी मुरली से प्यार। लेकिन मुरली सुनने का मतलब ये नहीं कि वो कागज पे जो लिखा वो हमने बहन ने पढ़ लिया और हमने सुन लिया, दो चार पॉइंट नोट कर लिए, ये मात्र नहीं है। मुरली के द्वारा हमें जानने को मिलता है बाबा क्या है, वो हम सबसे कितना प्यार करता है, उसके मन में हमारे लिए कितनी महान भावनाएं हैं, वो हमें क्या देखना चाहता है। साथ में मुरली सुनने आप जाएं ईश्वरीय सुख से स्वयं को भरपूर करने के लिए, पॉइंट के लिए नहीं। देखो ये बाबा के इस विश्वविद्यालय में ही नियम है, रोज मुरली सुनते हैं सभी, जो नहीं सुनते वो हाथ उठाओ। मैं उल्टा प्रश्न पूछा है, बहनें सुनती हैं सब? मुरली का ही ये इफेक्ट है कि रोज सवेरे हमारे विचार बदलते हैं। ध्यान दें आप इस पे, और ये विचार परिवर्तन हमें महान बनाता है। रोज हमें एक मौका मिलता है जब हम स्वयं को अच्छी तरह देखें, रियलाइज करें हम कौन हैं, कितने महान हैं और हमारे में क्या वीकनेस रह गई है। मिलता है नहीं रोज समय, तो मुरली सुनने जाएं, बहुत सुख लेकर घर वापिस आए हैं। कल की मुरली का वरदान मैं आपको याद दिला दूं, कल सुख चाहिए तो क्या प्रैक्टिस करो। कल थोड़ा ज्यादा समय हो गया, याद करने की कोशिश करो। मुरली तो भूलती है ना, सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज कौन सी है? मुरली। और सबसे ज्यादा याद रहने वाला माया। जो याद रहनी चाहिए सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा भूल जाती है। और जो व्यर्थ की बातें भूल जानी चाहिए वो बहुत याद रहती है। कोई कुछ कहकर चला जाए सारा दिन याद रहता है, उसे ही याद करते हैं। जिसे भूल जाना चाहिए उसने गलत बोला, उसे याद करेंगे सारा दिन, ये आया था ऐसे बोला, आने दो इसको दोबारा मैं भी ऐसे बोलूंगी। चलता रहेगा चिंतन बहुत सारा, न जाने क्या क्या संकल्प मिर्च मसाला उनमें मिक्स होता रहेगा। तो कल की मुरली में था नहीं, डायरी न खोलो आप, मैं बता देता हूँ। आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति, सुखी रहने का आधार है ये। संसार में ये कोई नहीं बताएगा, ये भी गुरु लोग भाषण कर देंगे, वे विषय वासनाओं में सुख नहीं मिलेगा या साधनों में सुख नहीं मिलेगा, पर कहाँ मिलेगा ये किसी को पता नहीं। तो अपने अपने घरों में सभी को ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? जितने भी घर के मेंबर हैं, ये सब आत्माएं हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई में मेहनत भी नहीं और ये शिकायत भी नहीं कि मन एकाग्र नहीं होता। ये सब आत्माएं हैं हमारे घर में, आप अपने बिजनेस में भी है ना, घर में दृष्टि डाल दो, सब आत्माएं हैं। जैसे माताएं अपने बच्चों को याद करती हैं ना, स्कूल में गया है तो उसको याद करती हैं, कुछ हो ना जाए, टाइम पे आया नहीं आया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे भी याद करती हैं। ये आत्माएं हैं और मैं भी आत्मा, प्रकृति की कुटिया में बैठकर इन आंखों से देखती हूं। बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है। मैं चमकती आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर आंखों से देखती हूँ। प्रैक्टिस करेंगे, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो योगी बनाने में बहुत सहायक होंगी, संकल्पों को शांत करने में सहायक होंगी। योग सवेरे एक धारणा और ले लें ध्यान पर, जो अति गुह्य मामा ने भी संदेश में दिया, बाबा की मूल्यों में तो आता ही है, मैं और मेरे का त्याग, जो सूक्ष्म है और वो हमें करना ही है। मैं अभिमान बढ़ाता है, मेरा आसक्ति मोह पैदा करता है, इन दोनों पर हमें बहुत ध्यान देना है। ये भी मैं पन न हूं, मैं बहुत समय से ज्ञान में हूं, बहुत अनुभवी हूं, ये भी नहीं, क्योंकि बहुत समय से ज्ञान में चलने का कोई ज्यादा महत्व नहीं अगर पुरुषार्थ श्रेष्ठ न रहा हो। अब योग को सरल बनाने के लिए सभी को सवेरे अवश्य उठना चाहिए। ये मैं पूछूंगा नहीं कि आप उठते हैं नहीं उठते, आपको लज्जा आएगी, ठीक बात है या नहीं? सवेरे उठना पहली शर्त, लेकिन सवेरे उठ के क्या करें इम्पोर्टेंट ये। कई लोग 3 बजे भी उठते हैं लेकिन जीवन को एंजॉय नहीं करते, क्योंकि ये प्लान नहीं बनाते कि 3 बजे उठ के करना क्या है। तो छोटा सा प्लानिंग कर लें सवेरे के लिए, 1.25 घंटे की प्लानिंग करें, और ये ध्यान रखेंगे कि 4:45 बजते ही ये न सोच ले योग पूरा हो गया बस अब छुट्टी। बहुत लोग ये गलती करते हैं, छुट्टी है ही नहीं, सदा ही कुछ न कुछ प्रैक्टिस चालू रखनी है, ताकि व्यर्थ को मार्जिन ही न मिले अंदर प्रवेश करने की। तो सवेरे की प्लानिंग, उठते ही कुछ सुंदर संकल्प करने चाहिए बाबा के साथ। मैं बहुत सुनाया करता हूँ और वो बहुत ही सुंदर चीजें हैं जिससे मन फ्रेश हो जाता है। और सवेरे के लिए ये बात ध्यान देने की है कि एक भी संकल्प यदि व्यर्थ आया तो उसकी चेन चालू हो जाएगी, उसे जुड़ा दूसरा तीसरा। इसे कोशिश करनी है सवेरे हम सोचें, ध्यान दें इस अंतर पे, मन ना सोचे हम सोचें, नहीं तो मन कहीं भी भटकेगा। हम सोचेंगे, हम क्रिएट करेंगे संकल्पों को, और बाबा को गुड मॉर्निंग करें उठते ही, और फील करें हमने बाबा को नमस्ते की, उत्तर में बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बिल्कुल अनुभव आधे मिनट के लिए चाहे 10 सेकंड के लिए गुड मॉर्निंग की, ऊपर जाकर हाथ हमारे सिर पर आ गया। पसंद है? जब दोबारा हम गुड मॉर्निंग करते हैं, कब करते हैं दोबारा? मुरली के समय, मुरली समाप्ति पर, तो फिर ऐसा ही अनुभव करना है। ऊपर गए, बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते की, और अब बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर फैला दी। तो 2 बार प्रभु मिलन होगा, और सवेरे और अच्छा लगे तो बाबा ने हाथ भी रखा और दृष्टि भी देने लगे। इस तरह बाबा के मिलन से शुरू करेंगे अपने दिन को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर मनुष्य के लिए, ज्ञानी अज्ञानी सब के लिए, आंख खुलते ही पहला संकल्प मन में क्या उठा। तो इसके बाद पहला संकल्प हमारा तो बाबा का हो गया, इसके बाद बाबा से बातें करेंगे, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अगर थोड़ा थोड़ा ये भी याद कर लें क्या क्या दिया सवेरे, तो और आनंद हो जाएगा। शुक्रिया करें एक एक चीज के लिए। फिर कुछ अच्छे संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो उठते ही प्रभु मिलन हो रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ये सुंदर संकल्प है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे बाबा ने काम दिया है जग के कल्याण का, मुझे जग में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं। सवेरे सवेरे ऐसे सुंदर विचार कर लिया करें। 3 मिनट भी ये सुंदर विचार हो गए तो सारे दिन अनेक व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति रहेगी। देखो मनोविज्ञान के अनुसार कुछ लोगों के मन में सारे दिन में 60,000 संकल्प उठते हैं, नापे होंगे उन्होंने। कुछ के मन में 50,000, कुछ के मन में 40,000। कितने ज्यादा हैं हमें तो पता भी नहीं, इतना मोट संकल्प करते हैं क्या हम? इसको कहां तक ले आए? नीचे 10,000 तक ले आए? नहीं, आपने काफी अच्छा बोला, 10,000 तक ले आए तो मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। और कम कर दें कितने तक किया जा सकता है बोलो? 1,000 तक भी किया जा सकता है। और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो 100 तक भी किया जा सकता है। और वो तब संभव है जब हम सारा दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते ही रहे, तो वही संकल्प हमारे होंगे, बाकी संकल्प शांत रहेंगे। तो 10,000 तक लाने का संकल्प करें, बहुत कम हो गई संकल्पों की स्पीड। सवेरे उठकर इस तरह अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे। उसके बाद 5 स्वरूपों का अभ्यास, चाहे आप योग में बैठते हैं, घरों में रहते हैं आप सभी, तो योग में कईयों को बैठते ही नींद आ जाएगी, इसलिए जिनके घर में थोड़ी सी भी जगह हो घूम के योग करें, थोड़ा फ्रेश करें अपने को, हाथ मुंह धो के भी करें। कई ऐसा करते हैं उठे और योग में बैठे और सो गए जल्दी, थोड़ा बैठ छोड़ के नीचे थोड़ा सा फ्रेश, स्नान कर सके तो अच्छा, नहीं तो थोड़ा फ्रेश अवश्य हो जाएं। और फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। एक अभ्यास, दूसरा अभ्यास पावरफुल योग। इसके बाद बहुत पावरफुल योग लगेगा, चाहे हम आत्मा बनकर परम धाम में जाकर बैठें, चाहे फील करें परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, चाहे एक बहुत अच्छा अभ्यास बाबा याद दिलाते हैं हमेशा, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अभ्यास किया जाए। बाबा को सिर के ऊपर छत्र छाया देखें। इसके बाद तीसरा अभ्यास संसार को सकाश देना। चौथा अभ्यास सूक्ष्म लोक में जाना, ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, बाबा को सामने देखना, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, उनकी तेजस्वी किरणें सामने से फैल भी रही हैं, मुझ पे भी पड़ रही हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बाबा ने वरदान दिया, कुछ याद दिलाया तुम कौन हो। और फिर हम बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। ये शुक्रिया करना बहुत बड़ी चीज है दुनिया में, तो आजकल विदेशों में इस पे किताबें लिखी गई हैं। वो भगवान को शुक्रिया करना तो नहीं जानते, पर उन मनुष्यों को जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, उन्हें शुक्रिया करते रहें। तो इस तरह कम से कम चार भागों में अमृत वेले को बांट लें। जिसका योग बिल्कुल नहीं लगता वो सवेरे उठकर पहले अव्यक्त मुरली पढ़ लें थोड़ी सी, और अगर आपके पास साधन है तो सीडी चला दें अव्यक्त मुरली की, आजकल तो फोन में ही भर जाता है सब कुछ। थोड़ी सी अव्यक्त आवाज सुन लें 5-7 मिनट, मन एक नशे में आ जाएगा, व्यक्त से मुक्त हो जाएगा और योग बहुत अच्छा चलेगा। तो सवेरे के समय को इस तरह व्यतीत करें। बाबा की बहुत मुरलियों में बाबा ने दिनचर्या में योग अभ्यास कैसे करना चाहिए वो सिखाया है। जैसे स्नान करते समय संकल्प करो, ये देह मेरा मंदिर है और मैं आत्मांदर देवी हूँ, देवता हूँ, इस देव हूँ। इसको 5 बार याद कर लो स्नान करते समय, तो एक अच्छी स्मृति बनती जाएगी और स्मृति से स्थिति बनेगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। मुरली से हमें कोई ना कोई नशा साथ ले जाना चाहिए, नशा बहुत जरूरी है। नशे से सबसे पहला फायदा होता है व्यर्थ की समाप्ति। जैसे यहां भी कोई नशे में हो कैसा रहता है वो राजा है, नशे में संकल्प तो बंद हो जाते हैं, अपने को राजा समझते हैं बड़े, इसीलिए तो लोग ज्यादा पी रहे हैं, टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती, चिंताएं बहुत हैं, संकल्प कंट्रोल नहीं होते तो सोचते हैं सो तो जाए कम से कम, फिर वो आदत पड़ जाती है और वो आदत बड़ी नुकसानदायक होती है। फिर किसी के लीवर खराब, किसी की किडनी खराब, किसी के हार्ट पे इफेक्ट, शरीर के जो मुख्य अंग है उन पे इफेक्ट आने लगता है शराब का, आंखों पे, ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हम ईश्वरीय नशे को भी बढ़ाते चलें। योग के कुछ अभ्यास लिख लें आप और उनको अपनी दिनचर्या में अभ्यास में लाते रहेंगे। सिंपल एक अभ्यास, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। बहुत सहज प्रैक्टिस। आप पैदल जा रहे हैं कहीं, ये संकल्प करके चलो। आप बाइक पे चल रहे हैं अपनी, ये संकल्प लेकर चलो। और कहीं आप वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये संकल्प लेकर घूमो। तो किरणें फैलती जाएंगी और ये सहज सिंपल योग हो जाएगा। इसी में दूसरा जोड़ दें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आत्मिक स्मृति के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बाबा कराते रहे। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूं, पीछे मुरली में आया, तुम आत्माओं ने अपने शरीरों पर सवारी की हुई है, हम सवार हैं इस घोड़े पर। ये बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, ये ड्रिल बहुत सुंदर है, योग को सरल बनाएगी। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, फिर यहां से निकलकर चली ऊपर अपने धाम, शिव बाबा को टच किया, शक्ति हम में आ गई, फिर मैं आत्मा वापस अपनी देह में। 10 सेकंड कर दो 10 बार, उठ के चली मैं आत्मा परम धाम में, बाबा को टच किया, फिर वापिस आ गई प्रकृति की कुटिया में। रूहानी ड्रिल का एक स्वरूप बाबा ने और दिखाया, उसको भी सभी अभ्यास करेंगे, उससे योग में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, योग लगाने को मन करेगा। योग बोर नहीं करेगा। हालांकि ये शब्द योग से जुड़ता नहीं है, पर योग करते करते मन बोर भी होता है, एक ही चीज करेंगे ना, इसलिए उसमें चेंज कर लेना आवश्यक है। ये रूहानी ड्रिल इसको कहेंगे। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं, पहले यहां अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूं, फिर मैं फरिश्ता इस देह से निकल कर गया सूक्ष्म लोक में, वहां बाबा से ये अनुभव जो हमने पहले चर्चा की, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पे हाथ रखा, वरदान दिए, हम उन्हें थैंक्स देंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा उड़ गई परम धाम। परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास बैठ गई कुछ देर, चार्ज हो गई वहां, और फिर वापस आ गई अपने शरीर में। तो जाना और आना, इससे योग बहुत सरल हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। मैं सभी को ये बात कहूंगा, ये संकल्प छोड़ दें कि बहुत संकल्प चलते हैं, कुछ संकल्प ले लें जिनमें रहने से सारे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। मन अगर हल्का है, मन अगर नशे में है, मन में अगर बहुत खुशी है, तो योग बहुत अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिस सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, बहुत पावरफुल है। बहुत बार हमने सुना बाबा के संदेशों में, और प्रैक्टिस मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, बिल्कुल उनको अपने आंखों के सामने देंगे, सामने से किरणें पड़ रही हैं। ये सब पावरफुल योग बीज रूप, और बीज रूप के लिए मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ, दोनों बिल्कुल साथ बैठे, आत्मा चार्ज हो रही है, आत्मा से मैल जैसे निकल रही है, बाबा के वाइब्रेशन सारे आत्मा में समा रहे हैं, आत्मा को निर्मल कर रहे हैं। जैसे आत्मा से कोई निकलता, देखो काला काला धुआं, प्योर हो रहे हैं हम, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल बन रहे हैं। योग की ऐसी पावरफुल प्रैक्टिस, मैं आत्मा यहां भ्रकुटी में, और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, जैसे फाउंटेन के नीचे हैं हम। ये चलते फिरते भी किया जा सकता है, योग ऐसा ही सब्जेक्ट है जो कर्म में चलते फिरते बहुत किया जा सकता है। एक दो शर्त भी ध्यान देंगे, जिनको कर्मेंद्रियों के रस बहुत हैं, उन्हें योग का रस प्राप्त नहीं होता, चाहे वो खाने पीने का रस हो, चाहे कानों से व्यर्थ सुनने का रस हो, चाहे आंखों से खराब चीज देखने का रस हो, कोई भी रस योग के रस को समाप्त कर देता है। और ध्यान देंगे एक बात पर, बस योग की इतनी पॉइंट्स। मैं आप सभी से प्रश्न पूछता हूं, ये लास्ट, बाबा का बनने के बाद किस किस ने अपने क्रोध को बहुत छोड़ दिया? बहुत भाई बहने हैं, बधाई हो आप सभी को, बड़ी खुशी की बात है ना, क्रोध छोड़ना। तो हम सभी कौन हो गए क्रोध छोड़ने वाले? बहुत पावरफुल आत्माएं जो काम और क्रोध को जीत लेते हैं, वो मोस्ट पावरफुल आत्माएं हैं। उन्हें और किसी विकार को जीतना तो खेल है। अब बाकी सभी संकल्प करें, हमें भी क्रोध मुक्त होना है। होना है, सबको होना है। लिख लो छोटी सी विधि, सवेरे उठ के ही करेंगे। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा, मैं माया जीत हूं। चौथा, मैं क्रोध मुक्त हूं। और पांचवा, मेरा चित्त शांत हो गया है। ये भी याद न रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सात बार करेंगे इसी क्रम से, बस क्रोध छूटने लगेगा, चित्त शांत रहने लगेगा। तो सभी बाबा से अपना पूरा अधिकार लेने के लिए अब संकल्प करें। और मुझे ये बात बहुत प्रिय लगती है, आपको भी लगती होगी, साकार मुरलियों से है। सामने खड़े होकर बाप दादा कहते हैं हमें, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। कितनी बार हम साकार मुरलियों में सुनते हैं, ये सुनते हैं या नहीं? आप भी ध्यान देंगे, आती रहती है बात, मेरे से जो चाहे ले लो। तो आप सभी मेहनत करेंगे, योग, योगी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं। योगी आत्माओं पर बाबा की नजर रहती है। कि बाबा ने कहा था 77 में, जो बहुत मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूढ़िहान करता हूं। तो योगी तो बाबा के नैनों में बसते हैं, ठीक है? अब आप निरंतर योगी बन जाना, बनेंगे ना? ओम शांति।
ओम शांति। ये आपका सहज ब्राह्मण योगी जीवन धाता जी ने बना दिया, और सबने क्रोध मुक्त निर्मल मन निर्मल बुद्धि बनाने का लक्ष्य भी दे दिया। जिन्होंने ऐसा लक्ष्य लिया है, प्लान अपनी माइंड इंटेलेक्ट में फीड कर लिया है, वो हाथ उठाएं। धाता जी को धन्यवाद यही होगा कि हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। थैंक यू।
चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी।